ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय राजू भाई जी, पूरा नाम आपका बड़ा सा है, राजेंद्र प्रसाद जी, लेकिन यज्ञ में सभी बरसों से राजू भाई के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब आप आए थे अपनी किशोर अवस्था में, ज्ञान समझा और बाबा के पास आए, हेडक्वार्टर में ही आकर समर्पित हुए, दादियों के साथ रहे। और राजू भाई इसलिए भी अच्छा सा छोटा सा नाम है कि वो समय था जब आपने सिर्फ सीखा बहुत कुछ सब बड़ी बहनों यानी दादियों से, तो वो भी आपका अनुभव बन गया। कभी प्यार मिला, पालना मिली, तो कभी थोड़ी आंख दिखाई गई, तो वो सब कुछ अनुभव में शामिल होता गया। और वही अनुभव लेकर आप इसी घर में, बाबा के इसी दर पर, इसी चौखट पे, बच्चे से बूढ़े तो नहीं कह सकते, बड़े होते गए और बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं आप संभालते गए। हर तरह की छोटी छोटी सेवा आपने सीखी, या टाइप करना हिंदी में, सिंधी में, इंग्लिश में, और फिर वो टाइप करते, मुरली लिखते, मुरली पढ़ते, बहुत चिंतन प्रखर होता गया आपका, क्योंकि बहुत मुरली पढ़नी पड़ती थी उसके लिए बार बार, तो वो आपके चिंतन में, आपके चरित्र में और तेज लाती गई। वर्तमान समय राजू भाई जी आदरणीय मेहसाना के सरला दीदी के साथ उस विंग में काम करते हैं जिसको हम कुछ जानते भी नहीं थे ज्यादा, और वो विंग आजकल बहुत बहुत बाबा की प्रत्यक्षता कर रहा है, ग्राम विकास प्रभाग, ग्राम विकास प्रभाग, और उसके अतिरिक्त उसके में बहुत सी रिसर्च होती है, बहुत सी उसमें ट्रेनिंग चलती है, कृषकों की, किसानों की ट्रेनिंग, और बहुत बहुत काम कर रहा है आजकल। आप उसके राष्ट्रीय समन्वयक हैं, और अपनी छोटी उम्र से लेकर आज तक जो आपने ज्ञान, योग और आध्यात्मिक जीवन में बहुत चमक पैदा की, वो बहुत से कुमार कुमारियों के लिए एक प्रेरणा रही है। अपने देश में ही नहीं, आपने विदेशों में भी जाकर सेवा की है। आपके लौकिक परिवार से भी बहुत से भाई बहन समर्पित हुए, ज्ञान में है और सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। कईयों से पूछने समझ सुनने को मिलता है, वो जो राजू भाई जी है ना, वो हमारे चाचा जी हैं, मेरे अंकल हैं, कोई बड़े भाई हैं, ऐसा सुनने को मिलता है तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमारे आदरणीय राजू भाई जी आज हम सबके बीच हमें वही ज्ञान की महीन बातें समझाने, सिखाने के लिए, और हम सबका ब्राह्मण जीवन A1 क्वालिटी का हो जाए ऐसा बनाने के लिए हमारे बीच पधारे हैं राजू भाई जी।
ओम शांति। सभी ने 3 दिन बहुत अच्छी तपस्या की, बाबा के घर में पांडव भवन में तपस्या का गोल्डन चांस लिया। कितनी दूर दूर से बाबा के बच्चे मधुबन में आते हैं और विशेष तपस्या करके खूब शक्तियां भर करके जाते हैं। अच्छा लगा ना सभी को, बहुत अच्छी भट्टी किया ना। उड़ीसा के कोने से नौरंगपुर और सभी आजू बाजू के सेंटर्स के भाई बहने दिखाई दे रहे हैं। बाबा के घर में आना ही और विशेष करके मधुबन की भट्टी मिलना बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि इस स्थान पर ब्रह्मा बाबा ने, हमारी मातेश्वरी जगदम्बा माँ ने, हमारी दीदी मनमोहिनी ने, दादी प्रकाशमणि जी ने तपस्या की है। उनके तपस्या के बहुत अच्छे वाइब्रेशंस, प्रकंपन इस भूमि पर चारों तरफ अनुभव होते हैं, इसलिए कहते हैं कण कण से तेरी याद आती है। तो इस स्थान पर जहां भी जाएंगे आप, जिधर भी घूमेंगे बैठेंगे, तो सब उसका अनुभव करेंगे कि कैसे योग के पवित्र वाइब्रेशन से स्थान अपने आप में चार्ज हो गया है। बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ 3 दिन में आपने बहुत अच्छी क्लासेस सुनी होंगी, योग किया होगा। आज शायद लास्ट दिन है और इस दिन विशेष सभी स्वयं में खूब शक्ति भर करके कुछ संकल्प लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये जुलाई मास हमारी मीठी दीदी मनमोहिनी का मास है, यादगार है। 28 जुलाई, आज 25 है, 28 जुलाई को दीदी ने अपने इस भौतिक देह का त्याग किया था। 28 जुलाई 1983 में। और दीदी का एक ही स्लोगन रहा लास्ट में, अब घर चलना है, अब घर जाना है। मुझे ड्रामा में दीदी जी की पालना 11 वर्ष तक मिली। मैं 71 में आया, 72 में समर्पित हुआ और अंग संग रहने का सौभाग्य इस मुरली ने ही दिया, क्योंकि दीदी नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट थी। लौकिक में उन्होंने स्टडी नहीं की, स्कूल नहीं गई, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नंबर 1 स्टूडेंट। दादी जी मुरली सुनाती थी, यही सामने हिस्ट्री हाल, वही हाल था, ये नहीं था मेडिटेशन हाल, ये बाद में बना। और इसी हिस्ट्री हाल में एक भी कुर्सी सोफा नहीं था, तो दादी जब गद्दी पर बैठ के मुरली सुनाती तो दीदी ऐसे सामने बैठ करके नोट्स लेती, क्वेश्चन लिखती, और मुरली पूरी होते ही कहती है, अभी हम आपकी तरफ बॉल फेंकते हैं, कौन कैच करता है, कौन इसका सही उत्तर देता है, उसको डबल टोली मिलेगी, और अगर सही उत्तर नहीं दिया तो उसकी टोली आज बंद। क्लास के बाद टोली मिलती ना मधुबन में। तो दीदी की रमणीकता और गंभीरता, लौ ला, बहुत बैलेंस युक्त जीवन थी, लॉफुल भी बहुत थी, मात्र स्नेही थी, माँ का प्यार भी दिया, लेकिन ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में कोई ढीलापन ना आए उसके लिए वो लाफुल थी। हर बात में एक एक को क्लास नहीं कराई, मुरली नहीं पढ़ के सुनाई, लेकिन एक एक की पर्सनल पालना की, उनको प्यार दिया, पालना दी, भाषणा दी, और हर शिक्षा में हर बात में गाइड किया, क्योंकि हम सब छोटे छोटे 15-16 साल की उम्र में आ गए, न बाबा के प्रति इतनी श्रद्धा भावना थी, न यज्ञ के प्रति, न पढ़ाई के प्रति, ठीक है बच्चे थे, स्कूल की लाइफ थी, घर में मुरली चलती थी, और जब मुरली पूरी हो जाती थी तब हमको उठाते थे सो करके 8-9 बजे, जब स्कूल जाना है उठो उठो जाओ तैयार हो जाओ। तो बचपना तो ऐसे ही बीता, वहाँ घर में तो एक दिन मुरली नहीं सुनी, मुरली रोज चलती थी, और डायरेक्ट बाबा मधुबन से ही मुरली भेजता था गांव में, एकदम उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, लेकिन मम्मा वहाँ होके आई थी। मम्मा गई थी 1960 में अपनी सब दादियों को लेकर के, 35 दादियाँ, अभी तो नाम ही नहीं दादियों का रहा, तो 35 दादियाँ हमारे जब गांव में आई होंगी तो क्या रौनक होगी। मैं तो छोटा था, 4 साल का था, मुझे याद नहीं आता, लेकिन मम्मा को दादियों को बैलगाड़ी पर बिठा के पूरे गांव में परिक्रमा दियाई, बहुत अच्छी रौनक थी। और वो गैस पर ही सब चलता था, बिजली तो थी नहीं, सीमो करीमाबाद उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है, बहुत पिछड़ा, मतलब कोई भी साधन नहीं थे, साधन तो उस समय थे ही नहीं, और घरों में कोई को लेट्रिन बनाने की बाथरूम बनाने की छुट्टी नहीं होती थी। ये घर में कोई लेट्रिन बाथरूम होती, बाहर जाओ। अब ये दादियाँ आएंगी तो उनको कहाँ रखेंगे, क्या कैसे स्नान करेंगी, कहाँ रहेंगी। तुम्हारे पिताजी बहुत भावना वाले निश्चय बुद्धि थे तो उन्होंने उनके लिए 3 सीट का सब अलग अलग बाथरूम लेट्रिन पानी की व्यवस्था कराई। और वो गैस चलती थी ना, बड़ी लाइट लालटेन जैसी बड़ी गैस, उसी गैस पर ही सब काम होता था, उसी से ही वही रोशनी का साधन था। लेकिन मम्मा उस गांव में 3 दिन रही और 3 दिन रह करके क्या मम्मा की पालना थी, उनका लेक्चर था। पिताजी पूरे गांव गांव में ढोलक लेकर के सबको संदेश देते कि साक्षात दुर्गा माँ सरस्वती माँ माउंट आबू राजस्थान से पहाड़ से हमारे गांव में आई है, उसके दर्शन करने के लिए चलो। तो ऐसे पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा कर दिया और मम्मा को बिना माइक के भाषण करने को मिला। 500 लोगों की सभा में पहली बार बिना माइक के मम्मा ने भाषण किया। उनकी आवाज़ तो बहुत तेज थी वैसे भी, लेकिन उससे जो बाबा के बच्चे निकले अभी भी हैं गांव में, बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन हैं कोई कोई। तो ऐसे दादियों की नज़र से, उनकी छत्र छाया से और बाबा की पत्रों से पालना मिली। क्योंकि मैं डायरेक्ट तो नहीं आ पाया उस समय मधुबन, लेकिन बाबा के पास जो पिताजी पत्र लिखते उसका जवाब जरूर आता और उसमें सबसे पहले नाम में राजेंद्र प्रसाद बच्चे को याद देना, बाबा पूरा नाम लिखता था। तो ऐसे करके बाबा के पत्र और दादियों का स्नेह मिलता रहा और घर में पाठशाला खुली। लेकिन जब मैं मधुबन में आया तो दीदी ही यहाँ की मुखिया थी उस समय। दादी आ गई थी बॉम्बे से दीदी के साथ बाबा के अव्यक्त होने के बाद, लेकिन दीदी ने मम्मा के बाद यज्ञ को संभाला था। मम्मा 65 में अव्यक्त हुई थी। देखा है कमरा, दीदी का कमरा, मम्मा का कमरा बाबा के कमरे के बिल्कुल साथ है, सिटिंग रूम बना हुआ है अभी। और उसी कमरे में मम्मा की चारपाई पर ही बाबा ने दीदी को रखा था। दीदी वहाँ ही रहती और हर बात का, एक एक बच्चे जो आते उनकी दिनचर्या क्या होगी, उनको भोजन क्या खिलाना है, उनकी क्लासेस कौन कराएगा, उनको पिकनिक पर कहाँ ले जाना है, बहुत अटेंशन देती थी। सौगात क्या देनी, सौगात का जो कमरा था, जब मैं पहली बार आया तो मेरे को कहती है तुमको जो चाहिए यहाँ से ले लो, सौगातें रखी हैं। अंदर डाल दिया मेरे को सौगातों के स्टोर में, तो मैं क्या लूँ यहाँ से। तो बहुत अच्छा एक थैला दिया जिसमें श्री कृष्ण हाथ में जो गोला लिया है ना, वो फोटो था उसमें, उनको ये पसंद आ गया तो वो लिया। कहती है ठीक है, लेकिन अटैची तुम अपने ले आओ। मैंने कहा अटैची क्या करेंगी, पता नहीं अटैची क्यों मंगाती हैं। लोहे की अटैची थी हम लोगों के पास, ये तो थी नहीं। तो जब अटैची मंगाई तो थोड़ा डर लगा, पता नहीं क्या चेकिंग हो रही है क्या, हम जाने के दिन अटैची मंगा रही हैं। कहती रख के जाओ, संतरी दादी स्टोर संभालती थी, कहती यहाँ रख दो, सुबह जब जाना तो ले जाना। अब अटैची मैं रख करके चला गया। सुबह जब आया जाने के लिए छुट्टी लेने तो दादी दीदी कहती जाओ उठा लाओ अपनी अटैची, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे नए सूट पैंट सब सेट करके 8-10 जोड़ी भरे हुए थे। ये क्यों रखा दीदी, ये क्या करेंगे। अरे जाओ तुम रोज नया नया पहन के घूमना, रोज स्कूल में नए नए ड्रेस में जाना, तो तुमको ये लोग नहीं कहेंगे कहाँ ये गया था आश्रम में, बहुत गरीब तो नहीं है आश्रम, तुमको छुट्टी मिल जाएगी आगे के लिए, नहीं तो लोग छुट्टी नहीं देंगे गाँव में। क्योंकि हम लोग, हम परिवार में 3 पिताजी भाई, उनके बीच में मैं अकेला बेटा। तो दादी को दीदी को लगता था इसको इस घर से छुट्टी कैसे मिलेगी, 3 की प्रॉपर्टी 3 की दुकान 3 की खेती सब घर, और उसका एक ही वारिस हो तो सबको है सोचेंगे ना ये इतना छोड़ के कहाँ जाएगा। लेकिन दादियों ने परखा और परख करके इतनी पालना दी, इतना स्नेह दिया, तो मैं तो यहाँ का ही हो गया। कहते ना मधुबन का जादू, तो मधुबन का ऐसा जादू मुझे लगा। एक मास सेवा की थी मैंने 71 में, 9th में पढ़ता था, तो इतनी अच्छी पालना दी बड़ों ने, इतना स्नेह दिया, कोई लॉफुल नहीं बने, बहुत लॉफुल बने। लेकिन जब मैं 72 में आया, फिर से रिटर्न वापस आ गया, तो यहाँ रहने लगा। फिर दीदी के संग रहने का सौभाग्य मिला, क्योंकि सिंधी सीखी, दीदी की राइटिंग पढ़ना सीखा, टाइप सीखी, और दीदी का एक बहुत अच्छा अभ्यास था, जो बाबा के समय बाबा पत्र लिखते थे ना, जितने बच्चों को पत्र लिखना वो बाबा अकेले ही लिखते थे सबको। तो दीदी ने कहा ये सेवा बाबा की हम संभालेंगे, तो बाबा के बाद दीदी सभी पत्रों का उत्तर देती थी। लेकिन उसके लिए पत्र का उत्तर केवल थोड़े से स्थान पर एक टुकड़े में, अंतरदेशी होता है जानते हैं आप सब, अंतरदेशी में पहला पूरा पढ़ने में प्रश्न उत्तर मुरली, और दूसरे पेज पर जो छोटा सा टुकड़ा उसमें पत्र का उत्तर। तो हमको कहती जाओ तुम सीखा है टाइप, कार्बन लगा के कापियां निकाल के ले आओ, जितने पत्र जाए, मान लो 50 पत्र जाएंगे तो कार्बन कापी कितने निकलेंगे, 5-6 अच्छी निकलती थी, अच्छे अच्छे कार्बन लगाओ तो 5 कापी 6 कापी, तो कभी 8 बार कभी 10 बार मैं प्रश्न उत्तर टाइप करता और लेके जाता दीदी के पास। दीदी कहती बहुत अच्छा, ये मुरली आ गई, इसके पीछे उत्तर लिख देते, लिखवा देती थी सबको बिठा करके। तो ऐसे दीदी दादी के साथ रहने का बहुत अच्छा सौभाग्य मिला। 83 तक दीदी रही, और दीदी ने एक एक को इतना ट्रेंड किया, उसमें भी दो बातों पर बहुत ध्यान खिंचवाया। एक संघ का ध्यान रखना, जब पहली बार आया ना तो मेरे को जब ये बात कही संघ का ध्यान रखना, तो मुझे तो प्रश्न उठ गए, संघ तो हम छोड़ के आए दुनिया वालों का, साथ में स्कूल के बच्चों का, और यहाँ भी संघ का ध्यान रखना, यहाँ तो बहुत अच्छे हैं सब, ब्राह्मण है, मधुबन है, बाबा की दादियों की पालना में पड़ रहे हैं, यहाँ भी संघ का संभाल कर। तो दादी दीदी बहुत प्यार से कहती है देखो कई लोग यहाँ सेवा करते हैं लेकिन अपनी सोन्नति के लिए समय नहीं निकालते, अलबेले हैं, अमृत वेले नहीं उठते हैं, मुरली क्लास नहीं करते हैं, सिर्फ भोजन किया, सेवा किया, ड्रेस लिया। तो मैं तो उनको समझती हूँ, इससे सफ़ेद ड्रेस वाले मजदूरी हैं, मजदूर हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अब ऐसे मजदूरों के संग थोड़ी बैठना है। जिनका ध्यान अपनी उन्नति पर नहीं है, जिनको पढ़ाई का कदर नहीं है, जो यज्ञ के लिए, यज्ञ प्रति, यज्ञ पिता के प्रति, बड़ों के प्रति आदर साथ सत्कार नहीं रखते, सिर्फ सेवा करते हैं, भोजन करते हैं और यहाँ रह रहे हैं, तो उस संग से बहुत बहुत संभलना, उनके साथ नहीं बैठना। इसलिए एक शिक्षा ऐसी मिली कि सब ब्राह्मणों को इस पर अटेंशन देना है। कई बाबा के बच्चे सेवा केंद्र पर आते हैं, बहनों का स्नेह मिलता है, टोली मिलती है, भोग मिलता है, और उनको लगता है सेवा ही सब कुछ है, सब प्रकार की सेवा में भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन मुरली सुनने के लिए नहीं बैठते, मुरली में रस नहीं, अमृत वेले सुस्त रहते हैं, सोए रहते हैं, तो क्या करेंगे, ऐसे संग में रहेंगे क्या, वो संग अच्छा है। आध्यात्मिक पढ़ाई की उन्नति का केवल एक ही साधन है, अमृत वेले का योग और मुरली। तो ये एक शिक्षा हमको पहले पहले मिली, और दूसरी बार जब दूसरे योग कराते थे, दीदी खुद ही योग कराते थे हमेशा गद्दी पर, दीदी अमृत वेले भी और नमाज शाम को भी खुद योग की टीचर थे, ड्रिल टीचर। तो एक दिन मेरे को बुलाती है, इधर आओ तुम योग कैसे करता है, तो मैंने कहा जैसे सब करते हैं। कहती सब कैसे करते हैं, तो मैं चुप हो गया। कहते देखो योग का तरीका क्या, योग करने का तुम लोग पता नहीं उद्धव बन के योग करते हो। उद्धव क्या होता है, एक भागवत के अंदर एक उद्धव की कहानी आती है, सुना है? उद्धव बहुत भगवान के प्रति श्रद्धा थी, बहुत भावना भी थी, लेकिन बहुत ऊंची नजर से देखता था। और जब गोपियां उसके साथ खेलती थी, डांस करती थी, नचाती थी, मटकी फोड़वाती थी, तो उसको बड़ा गुस्सा आता था, ये क्या कर रही है, पहचानती नहीं है कौन है, उसको रस्सी से बांध रही है भगवान को। तो था उद्धव भगवान के प्रति समर्पित, बहुत भावना थी, लेकिन गोपियां जो हंसती बहलती थी, खेल पाल करती थी, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो दीदी कहती है, उनका लौकिक नाम गोपी था, तो कहती है रे गोपियों का जो सुख था वो उद्धव को थोड़ी मिला, वो तो बस ज्ञानी था। सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, बुद्धि नहीं चलाओ, विवेक नहीं लगाओ ज्यादा, ऐसे नहीं बैठो सूखे सूखे, अरे प्यार से बाबा से बातें करो। और दीदी अगर बाबा कहती थी ना तो नैन गीले हो जाते थे प्यार से, जैसे एकदम आंसू आ जाएं, अरे कौन मेरा बाबा है, किसने मुझे बच्ची बच्चे कहा है, कैसे जीवन दी, कैसे बाबा ने अपना बनाया। तो प्यार उमड़ता है, प्यार उमड़ता है बाबा के प्रति, कहाँ से निकाला, कैसी जीवन थी, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, बाबा ने साफ किया, स्वच्छ बनाया, नरक से निकाला है। एक भाई थे बॉम्बे में, उनको संघ का दोष लगा, थे बहुत पैसे वाले घर के, ज्वेलर थे परिवार वाले, लेकिन बचपन में ही आदत बन गई शराब पीने की, बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की, और इतना अधिक नशा करने लगे, क्रोध करने लगे गुस्से में, तो जिधर से निकलते पूरा ही मोहल्ले वाले अपने गली में दरवाजे बंद कर देते, बहुत गुस्सा वाला था, किसी को मार दे, किसी का कांच तोड़ दे, गुस्से में जवान था। तो उसको देख करके लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते घरों के, बहुत क्रोधी था, बहुत प्रापी लेता था, और कभी कभी इतना पी लेता था जो कहाँ गिर गया नाले पर पड़ा हुआ है। कहीं चक्कर लगाते लगाते सब तो धुतकारते थे, लेकिन एक बार सेंटर के दरवाजे पर पहुंच गया तो बहनों ने बड़े प्यार से कहा, अरे भाई भैया आओ आओ आओ। अब उसको ये जो प्यार से दो शब्द कानों में गए, वो धीरे से चाह करके चुपचाप बैठ गया, जाकर पिया हुआ तो था, लेकिन बहनों ने ये नहीं कहा तुम क्यों पी करके आया भाग जा, नहीं नहीं आओ भैया आओ बैठो बैठो। बहुत स्नेह से उसको पानी पिलाया, उसे बात किया और बोला ठीक है अगर कल से तुम आना तो ये पी के नहीं आना, फिर तुमको मैं कोर्स कराऊंगी 7 दिन का। उसको जो इतना स्नेह मिला, अब उस स्नेह ने उसको जादू का काम किया उसके लिए। बस उस स्नेह के कारण उसने दूसरे दिन से संकल्प किया अब मुझे पी के नहीं जाना कुछ भी हो जाए। तो मैं एक बार गया था, मेरी गाड़ी चलाते चलाते कहता है मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं? मैंने कहा जरूर सुनाओ, गाड़ी आप चला रहे हो मैं तो बैठा हूं। तो कहता है भाई जी मैं तो रावण का बाप था। रावण का बाप था, क्या था, क्या करते थे? कहता है जब मैं पी लेता था तो मेरा कहाँ पर पड़ा हूँ, कुत्ते मेरा मुँह चाट रहे हैं, कोई मेरे को नहीं पूछता था, इतना घर वाले दुत्कारते थे, मेरा सारा बिजनेस चौपट हो गया, मेरे को लोग एकदम नफरत की दृष्टि से देखने लगे, मेरे परिवार वाले मेरे से बात नहीं करें, अब मेरी इतनी बुरी हालत कर दी, लोगों ने बुरी आदतें थी इसलिए ऐसी हालत हुई। लेकिन बाबा के दर पर एक दिन पहुंच गया और मेरी जीवन बदल गई, बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। और ऐसा कहने लगा और कहते कहते आंसू बहने लगे, रोने लगा एकदम। श्रेष्ठ दिया उन्होंने थोड़ी दिया, बाबा ने दिया। बोला बाबा तो निराकार है, वो तो कराने वाला इतने बहनों से है, और इतना अच्छी तरह से उसकी भावनाएं थी, हर सेवा में आगे कहता जितने पाप किए उतना हम पुण्य कर लें, उसके बाद सब सेवाएं की, सबके दिलों पर आ गया। उसको इतना सम्मान लोग देने लगे कि ऐसे लोगों को भी ब्रह्म कुमारियां चेंज कर सकती हैं, जिनसे सब ना उम्मीद हो गए, ऐसे लोगों को भी कितना पावन बनाया, कितना स्वच्छ बना दिया, इसी जीवन में इसको देवता बना दिया। तो ये है ब्रह्मा कुमारी इसकी पढ़ाई है। तो जब आप अपने जीवन पर थोड़ी नजर डालते हो, बाबा ने कहाँ से निकाला, कैसी जीवन दी, कितना स्वच्छ किया, साफ किया, कहाँ हमारा धन जा रहा था, कैसा हमारा तन हो गया था, कितना विकारों के अंदर हम लिप्त हो गए थे, फंस गए थे, तो विकारी जीवन को बाबा ने इतना निर्विकारी बनाया। और कलयुग में जब एक दिशा ही दूसरी तरफ दुनिया जा रही है, जब उसका ज्ञान मिल रहा है, पढ़ाई हो रही है उसके लिए, और बाबा ने उससे हमें इतना किनारे किया, नफरत दिलाई, इधर आ जा बच्चे, दूसरे रास्ते पर ले लिया, हमारा जीवन निर्विकारी बना दिया, स्वच्छ पवित्र बना दिया, और ज्ञान दाता बन करके जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान से कितनी जीवन महान बन गई, ज्ञानी तू आत्मा बना दिया, ज्ञानी तू आत्मा योगी बन गए। और योग भी क्या सिखाया बाबा ने, केवल डायरेक्ट परमात्मा से योग, किसी देहधारी से नहीं, किसी बीच में कोई जरूरत नहीं, किसी माध्यम की, मैं आत्मा और मेरा बाबा परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का मिलन, रूप में समानता है, गुणों में समानता हो जाए, इसके लिए हम भट्टी करते हैं, तपस्या करते हैं, योग करते हैं, कि जो भी कमी है, आत्मा के सात गुण हैं, और वो सातों गुण जिनमें कमी आई, बाबा उनका सागर है। अब उसके साथ जब हम संबंध जोड़ लेते हैं, योग करते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो वो सारी शक्तियां हमारे अंदर आने लगती हैं। तो मैं समझता हूँ जब आप भट्टियां करते हो, एकांत में बैठते हो, तो बाबा की मुरलियां चलती ना, अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो। आत्मा समझना माना क्या, बिंदु बन के बैठ जाना सिर्फ। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, उनका अनुभव करो। और उस अनुभव में बैठ करके, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, बाबा मेरा सागर ऊपर से किरणें दे रहा है, शक्तियाँ आ रही हैं, और ये गुण मेरे फुल हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। संगम युग पर ही हम सर्व ईश्वरीय गुणों से जब संपन्न बनते हैं, तब भविष्य में हमें दैवी गुणों से श्रृंगार होता है, दैवी गुणों की माला बाबा डालता है। संगम पर ईश्वरीय गुण है, आत्मा के गुण हैं, और देवताई जीवन में जीवात्मा के गुण हैं। आत्मा के तो हैं लेकिन शरीर में है, और देवताओं के वो गुण गाए हुए हैं। तो दिव्य गुणों से सजाने के लिए दीदी दादियों ने बहुत हम लोगों की पालना की, बहुत मेहनत की, एक एक बात का ध्यान खिंचवाया, संग पर ध्यान खिंचाया, पढ़ाई पर ध्यान खिंचाया। और अगर कोई को अपने आप को बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, लगता है मेरे अंदर कोई ऐसा छिपा हुआ संस्कार है, सबको नहीं पता चलता, चाहे जितना प्यारा स्नेही हो, संबंधी हो, मित्र हो, हमारे संस्कारों का उसको क्या पता। चलो संस्कार जब प्रैक्टिकल में कर्म क्षेत्र पर पता चलता है, दिखाई देते हैं, लेकिन जो हमारी अंदर की कमियां हैं, कोई ऐसा विकारी संकल्प है, विकल्प है, भावनाएं हैं, वो तो हम ही जानते हैं कि ये मुझे खत्म करनी है, ये देवता बनने में, योग लगाने में, ब्राह्मण जीवन में रुकावट है, विघ्न है। तो दीदी कहती थी, अगर उसको खत्म करना है तो क्या करेंगे, अपने टीचर अपने आप बनो, अपने से बातें करो, अपने आप को पढ़ाओ, अपने आप को समय दो। दूसरा कहेगा, भाई जी क्लास में आओ, भाई जी भट्टी में आओ, भाई जी योग, कब तक सुनोगे। कईयों को रुचि नहीं होती है, कितनी बार बहने कहती, भाई जी आज योग का प्रोग्राम है, आ जाओ, अगर बोलेंगे 5:30 क्लास है, आप 5 बजे योग में आ जाओ, तो 5:30 पहुंचेंगे, 5 बजे नहीं आएंगे। आधा घंटा योग का समय ऐसे निकाल देंगे, वो योग लगता ही नहीं, योग का रस नहीं, योग की प्राप्तियों का अनुभव ही नहीं। इसलिए हम सबको ध्यान देना है कि जब हम अपने से बातें करेंगे, अपने को समय देंगे कि मुझे जैसा बाबा बनाना चाहता है, कैसा बनाना चाहता, अपने समान संपन्न संपूर्ण, जैसे बाबा इवर पिवर है, कोई दाग नहीं है, बेदाग है। परमात्मा कैसा है, कोई दाग है क्या? दाग क्यों लग गए जो? क्योंकि आत्मा इस शरीर में आई, देह मन में आई, और देह में रहते रहते देह मन के कारण इन विकारों ने दाग बना दिया, दागी बना दिया। कितने प्रकार के दाग लग गए, मैल लग गए। अब बाबा आया है इनको फिर से स्वच्छ बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए। तो एक लक्ष्य रखना है कि अगर कोई भी दाग है तो मुझे उस दाग को मिटाना है, और उसके लिए तपस्या करो। तपस्या करते नहीं कोई बैठ जाओ जाकर के गुफा में सब काम धंधा छोड़ करके, लेकिन तपस्या का अर्थ है दृढ़ता संपन्न संकल्प। दृढ़ता का, तपस्या का अर्थ है एक बाबा दूसरा न कोई। तपस्या का अर्थ है देखते हुए भी नहीं देखना, बेहद का वैराग्य। जब इतना अंदर से वैराग्य आएगा तब त्याग होगा, तब छूटेंगी आदतें, नहीं तो नहीं छूटेंगे। वैराग्य आता है तब संन्यास होता है, ऐसे संन्यास नहीं होता। त्याग के लिए वैराग्य की जरूरत है, और वैराग्य असार, असार संसार है। कोई भी इंद्रिय सुख में रस नहीं है, ये नीरस है, वो एक क्षण का सुख सदा का दुख है। जब ये महसूस आएगी ना, तब इन विकारों पर, इन बुराइयों पर, इन आकर्षणों पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो दीदी ने लवफुल बन करके बहुत प्यार दिया, पालना दी, हर चीज का ध्यान रखा, खाने से पहनने से सब चीजों का माँ के रूप में पालना दी। लेकिन लवफुल के साथ लाफुल बनी कि कोई भी ईश्वरीय नियम और मर्यादा का उल्लंघन न हो, जरा भी बाह्य मुक्ता में ना आए। एक एक बात पर इतना ध्यान, मान लो हम भोजन पर गए हैं और दीदी उधर चक्कर लगाने के लिए आई है, पता चल जाता दीदी आ रही है, एकदम सन्नाटा हो जाता, साइलेंस, चुप। कहती थी सिक्योरिटी आ गई भी, ध्यान देना भोजन पर आवाज में क्यों आते हो, भोजन बाबा की याद में करना है, दूसरे की थाली में क्यों देख रहे हो, अपनी थाली को देखो, क्या खा रहे हो, कितना प्यार से खा रहे हो, बाबा को भोग लगा के खा रहे हो, आसक्त तो नहीं हो। आसक्तियां अगर हैं और भोजन खा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में रोग पैदा करे, बीमारी पैदा करे। तो ऐसे दीदी लौपुल होकर के अमृत वेले से रात तक ब्राह्मण जीवन में कैसे दिनचर्या में एक्यूरेट रहना है, हर बात का ध्यान खिंचवाया। दीदी दादी की जोड़ी ऐसी थी, कहते थे शरीर दो हैं आत्मा एक है। इतना संस्कारों को मिलाया। आज दो बहनें, चार बहनें एक साथ रहती हैं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में मन मुटाव, टकराव, आपस में भूल चाल तक बंद हो जाता। लेकिन दीदी दादी ने इतने बड़े संगठन को साथ लिया, सबको अपने से आगे रखा, अपने से ज्यादा सम्मान दिया। ऐसे नहीं मैं बड़ी हूं ये छोटी है, जरा भी कभी किसी को ये भासना नहीं आई, महसूस नहीं हुआ दीदी को दादी को बड़प्पन का अहंकार है या उस तरह से व्यवहार करते। दीदी की इस समय विशेषताएं आप सब सुन रहे हो, इकोनॉमी का अवतार थी, गलत है ना, दीदी की विशेषताओं में इकोनॉमी फुल थी, एक एक चीज का ध्यान। यहां तक भी अगर हम लोग कोई चीज बाजार से ले आए खा लें अलग से, तो भी हमारी क्लास हो जाती थी। यज्ञ के कायदे अनुसार चलना, उसी में फायदे हैं, कायदा ये कहता है अगर आपको कोई चीज चाहिए तो लिखत में भंडारी में लिख के डाल दो पर्ची, आपको सवेरे मिल जाएगी। शाम को अगर डाला है तो सवेरे आपको चीज मिलेगी। लेकिन आप पैसा रख करके मार्केट में जाओ और खरीद के ले आओ तो दीदी को पसंद नहीं था। एक बार क्या हुआ, हम लोग यहाँ भाई लोग इधर लाइट हाउस है यहाँ भाइयों का, उसमें 25 भाई हम रहते थे, एक कमरे में 5 थे, 5 कमरे हैं ऊपर, पहला बना था तो हम सबको वो कमरे मिले। जब कमरे मिले तो दीदी दादी का ध्यान था, ये इतना अलर्ट रहे, योगी बने, अमृत वेले कोई सोए नहीं, योग के बाद न सो जाए। तो दादी को बोला, दादी, क्योंकि दीदी खुद योग कराती थी, योग से बीच में नहीं उठती थी, तो दादी पीछे से बैठती थी पीछे सोफे पर, दादी इनको देखो ये भाई लोग बीच में उठ जाते हैं या कई लोग आते नहीं हैं, तो छोटे हाल में सबका पता चल जाता था कौन आया कौन नहीं आया, आप इनकी चेकिंग करो क्यों नहीं आते हैं, क्यों सोए रहते हैं। तो दादी जी एक दिन अमृत वेले योग में बीच से उठी, मोहिनी बहन को साथ ले लिया, और जब भाइयों की तरफ आई तो जो साड़ी का पल्लू है ना, घूंघट निकाल लिया इतना, अब घूंघट निकाल लिया और ऊपर हम दो तीन भाई थे बाहर खड़े थे, ब्रश कर रहे थे, योग से हम भी उठ गए थे, तो हम लोग जोर से आवाज दिया, हे माताएं तुम हमारी तरफ क्यों आ रही हो, भाइयों के कमरे हैं, इधर नहीं आना, माताओं के उधर रहने का है। तो जोर से जब आवाज दिया तो दादी ने अपना घूंघट ऐसे किया, हे चुप शांत भैया, सिक्योरिटी आ गई चेकिंग। सुबह सुबह 4:30 बजे अमृत वेले ऊपर दोनों आई और कहती हैं, आप हमारे साथ चलो, एक पेन डायरी लो, नोट करो कौन कौन सोए हैं, कौन बाथरूम में है, कौन क्या कर रहे हैं। अब पूरा ही चेकिंग हो गई, हर 5 कमरों में बाहर से दादी झांके कौन सोया है और नोट कराए, एक तरफ से चढ़ी और दूसरी तरफ सीढ़ी से उतर गई चिटकी लेकर के, सबके नाम नोट हो गए और दीदी को दे दिया जा करके। दीदी तो बताया ना, लव और ला का बहुत वंडरफुल बैलेंस था, लव भी बहुत था, प्यार बहुत था, लेकिन कोई भी ईश्वरीय कायदे का नियमों का उल्लंघन करे तो उसके ऐसे कान खींच देती थी। तो जब नाश्ता पूरा हो गया तो बुलाना शुरू कर दिया, एक एक घंटी बजा देती थी कमरे में, घंटी बजाती तो पहले वाले भाई आते हैं, जाओ उसको बुला लो, उसको बुला लो, जिसके नाम थे उसको पता चल गया था कि आज हमारी चेकिंग हुई है, आज शिक्षाएं मिलेंगी। लेकिन जब दीदी के सामने आता, दीदी उसको बहुत प्यार से अपने पास सोफे पर बिठाती और बड़े प्यार से पूछती, तबीयत ठीक है, ठीक है तबीयत, ठीक है, शायद नाश्ता कर लिया है, नाश्ता कर लिया, चक्कर लगा के आए, नक्किले घूमने गए थे, हाँ दीदी, बस नक्किले घूम के आए, नाश्ता भी किया, तबीयत भी ठीक है, और फिर भी अमृत वेले कहाँ थे, सोए हुए थे, अमृत वेले का महत्व पता नहीं है। अगर इस ब्राह्मण जीवन में अपनी प्रगति करनी है, बाबा से वरदान लेने हैं, शक्ति लेनी है, तो अमृत वेला मिस नहीं करना, कुछ भी हो जाए। पूरा टाइम योग 45 मिनट का तो होता है, उसमें बीच में उठते हो क्यों सोते हो जाएगा। बहुत प्यार से सिखाया और बाद में कि आगे के लिए ध्यान रखना। और अगर योग में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ रह के क्या करते हो, बाहर दुनिया बहुत पड़ी हुई है, जा सकते हो। ये लॉफुल लॉ बहुत है, प्यार बहुत है उन्नति के लिए, लेकिन ला इतना कड़ा है कि नहीं रहना है तो कोई बंधन है क्या, यहाँ कोई ने जबरदस्ती रखा है क्या, जा सकते हो, दुनिया पड़ी है, मौज करो, 10 बजे तक सो जाकर कौन मना करता है। लेकिन यज्ञ में रहना है तो यज्ञ के नियमों पर चलना है। बहुत प्यार से समझाया, टोली खिलाई और टोली खिला करके पका करके भेज दिया। ऐसे एक एक पर पालना दी, भासना दी, उसकी मेहनत की, फाउंडेशन को मजबूत कर दिया। दूसरी बात सुना रहा था इकोनॉमी की, तो एक दिन कोई ने बाजार से केला ले आया, एक भाई लाया होगा केला, खाया तो उसका छिलका तो डालेगा ना डस्टबिन में, तो जो सफाई कराने वाली बहन थी ना वो छिलका उठाया और उठा करके दीदी के पास लेके चली गई। दीदी ये जो पांडव लोग हैं ना भाई लोग, ये छिप छिप करके फल मंगा के खाते हैं। अब दीदी तो नियम माना नियम, कहती कौन है अच्छा, दादी को बोला, बड़ी दादी के पास कंप्लेन गई, दीदी क्लास नहीं कराती है। दादी कहती अच्छा सबको बुलाओ, क्लास हुआ हम लोगों का, किसने फल खाया है, किसके किसके पास पैसे हैं, पहले पूछा किसके किसके पास पैसे हैं, जिसके पास पैसे हैं सब कागज उठाओ और लिखो मेरे पास कितना पैसा है, क्यों रखा है, समर्पित माना क्या होता है, लिखो इस पर कागज पर। और आपको अगर फल की जरूरत है तो किसी ने मना किया है क्या, यज्ञ के अंदर कमी है क्या, सब मिलेगा, चिट्ठी लिखो और डालो बॉक्स में, बाजार से नहीं लाना। बहुत प्यार से नियम बताए लेकिन प्यार भी दिया। ऐसे बहुत अच्छी पालना हम यज्ञ वत्सों को दीदी दादी मिल करके देते थे, तो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ उन्होंने प्रैक्टिकल सिखाया, करके सिखाया। सब रात्रि क्लास में कोई कोई नहीं जाते, अभी तो कोई नहीं जाते, लगभग मधुबन वाले रात्रि क्लास को मिस कर देते, और वो कहती अरे चलो घंटी बज गई, और आगे आगे डायरी पे लेकर के बैठ जाती सबसे पहले जाके। स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, कोई भी बिना डायरी पेन के क्लास नहीं आ सकता, सबके हाथ में डायरी पेन होनी चाहिए, सबको जो अच्छी पॉइंट्स हैं उनको नोट्स लो, और नोट्स लेने के तरीके सिखाए। बाबा की मुरली कभी ज्ञान की सब्जेक्ट पर चलती है, कभी योग की सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स होती हैं, कभी धारणाओं पर बहुत सारी बातें होती, कभी सेवा पर होती, चार ही सब्जेक्ट तो बाबा ने पढ़ाई है, और कोई मुरली के अंदर चारों सब्जेक्ट का विस्तार है, कोई में एक दो पर है। कहती थी डायरी के चार भाग बनाओ, और जिस बात को आप अंडरलाइन करना है, जो अच्छी लगती है, वो अपनी डायरी में उसी जगह लिखो। एक हफ्ते के अंदर आपके हर सब्जेक्ट की 10-15 पॉइंट होनी चाहिए, नई नई पॉइंट्स। ऐसे करके ज्ञानी तो आत्मा किसको कहा जाता है, कैसे ज्ञान का मनन करें, चिंतन करें, क्योंकि माया का सबसे बड़ा वार जो होता है वो किसमें होता है, संकल्पों पर। व्यर्थ संकल्प चलते हैं, यही कंप्लेन है, व्यर्थ बहुत चलता है। व्यर्थ से बचने की युक्ति क्या है, संकल्पों को दबाना नहीं है, मारना नहीं है, उसका काम ही है चलना, वो तो चलेगा ही, चाहे अच्छा चलो चाहे बुरा चलो। इसको जितना ज्ञान युक्त बना दोगे, अच्छा अच्छा चिंतन करने की आदत डालोगे, उतना व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे। पूछना क्यों, कंप्लेन क्यों करना, व्यर्थ आता व्यर्थ आता, इसको अच्छा बिजी कर दो। कोई अच्छे कार्य में बिजी हो जाता तो दूसरे काम अपने आप छूट जाते। कई बार बाबा कहते हैं कि अगर कोई ऑफिस में बहुत बिजी हो, कोई आएगा काम कराने देखने, तो देखेगा भाई तो देख ही नहीं रहा है, तो इतना बिजी है, चुपचाप वापस चला जाएगा। माया भी देखेगी अरे इतना बिजी है ये, तो देख करके वापस चली जाएगी, वार ही नहीं करेगी, तंग ही नहीं करेगी। तो माया जीत अगर किसी को बनना है, व्यर्थ से बचना है, तो मन बुद्धि को फ्री नहीं छोड़ना। ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी हम लोगों को, फ्री नहीं रखो इसको, इसको कोई ना कोई अच्छा चिंतन दो, अच्छा होमवर्क दो, अपने आप की डायरी बना लो कि किस समय मुझे क्या सोचना है, क्या विचार करने हैं। किसी न किसी एक टॉपिक पर मनन चिंतन करो, तो हम लोगों की एक आदत बन गई। मुरली के बाद नक्की लेक का चक्कर लगाने जाते थे, मुरली में जो बातें दो चार अच्छी नोट की, पढ़ते नहीं थे लेकिन अंदर अंदर उस पर विचार करते थे, चिंतन करते थे, आज बाबा ने वरदान में ये कहा, आज ये बात बहुत अच्छी थी। और वहां से आए, जब समय मिला, थोड़ी देर कमरे में बैठे, डायरी लिखी, वही पॉइंट मनन चिंतन करके लिखी। तो आज मेरे पास कम से कम 25-50 डायरियां ऐसी छोटी छोटी अपनी हैं, जिनमें हर टॉपिक पर उस पर चिंतन लिखा हुआ है। इसलिए कोई भी टॉपिक दिया जाता है, मैंने बोलती किस टॉपिक पर क्लास कराओगे, ना कोई भी टॉपिक दे दो, सब चिंतन बाबा ने कराया है, सब बाबा ने, दादियों ने इतना ट्रेंड किया है, केवल ज्ञान चिंतन बाबा की याद मुरली का चिंतन, इसके अलावा कोई चिंतन मैंने किया ही नहीं, कोई दूसरी किताबें पढ़ी नहीं, इसलिए कोई कहानियां नहीं हमारी क्लास में मिलेंगी आपको, इसने क्या कहा उसने क्या कहा, कहानियां सुनाने वाले तो कोई बौद्ध की सुनाएंगे, कोई जैन धर्म की सुनाएंगे, कोई किसकी सुनाएंगे। अरे बाबा ने इतना अथाह ज्ञान दिया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान कितना विस्तार से सुनाया है, किसी भी सब्जेक्ट पर अगर कोई ने बाबा की मूल्यों की अच्छी स्टडी की है, मनन चिंतन किया है, तो कभी भय नहीं लगता। कहीं भी खड़ा कर दो, किसी भी स्टेज पर खड़ा कर दो, बाबा का इतना वंडरफुल ज्ञान है, उसमें साइंस भी है, इतिहास भी है, तो भूगोल भी है, तो गणित भी है, क्या नहीं बाबा ने पढ़ाया, लेकिन कितना गहराई से उसकी स्टडी की है। हमने सब दादियों को बहुत समीप से देखा, बाहर की कोई स्टडी नहीं उनकी। जानकी दादी ने बाहर की 3 क्लास पढ़ी थी, केवल 3 क्लास पढ़ी थी, और बाबा की मुरलियों से अधिक क्लासेस जानकी दादी की। सब मुरली, जब मैंने टाइप शुरू किया 73-74 में, सभी दादी की क्लासेस टाइप है मेरे पास, और एक क्लास दूसरे क्लास से नहीं मिलती है लास्ट तक भी, भले कुछ शब्द उनके पक्के हो गए थे, लेकिन कुछ न कुछ नवीनता, और नवीनता केवल मुरली के आधार से, और कोई स्टडी नहीं। लेकिन जब जाओ मुरली हाथ में, मैं दादी आप बहुत बार पढ़ते, अरे कहाँ पढ़ते हैं, आधा पेज पढ़ते हैं, कोई आ जाता है फिर छूट जाती है, फिर ऊपर से शुरू करते हैं। मुरली मुरली मुरली। अब बड़ी दादी को देखा, प्रकाशमय दादी को, समय समय दिन में नहीं मिलता था बार बार पढ़ने का, रात को एक बार भी नींद खुल गई तो सामने वाली बहन की नींद न फिटे, उसके लिए उन्होंने एक टेबल लैंप रखा था अपने चारपाई के साथ, मुरली और टेबल लैंप। नींद खुली, चुपचाप टेबल लैंप चलाया, अपनी तरफ लाइट किया और मुरली उठाई और पढ़ने लगी। थोड़ा देर आधा पेज एक पेज पढ़ा, फिर नींद आई, फिर सो गई। इतना बाबा की मुरली से प्यार, और मुरली का चिंतन करते करते वो ज्ञान स्वरूप आत्मा बन गई, ज्ञानी तू आत्मा बन गई। योग नहीं लगता है, उसका कारण है ज्ञान की कमी है। जो ज्ञान यथार्थ होना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किस लिए आया हूं, श्रेष्ठ कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, बाबा ने इतना वंडरफुल रीति से ज्ञान देकर के एक एक बच्चे को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, स्व का दर्शन करा दिया। कोई व्यक्ति स्व का दर्शन करा ही नहीं सकता और समझता है वो कोई हिंसक चक्र था, गला कट गया उससे। अरे गला कैसे काटेगा भगवान किसी का? स्व दर्शन, स्व आत्मा को कहते हैं, स्व का दर्शन। और जिसने अपने स्व का दर्शन कर लिया कि मेरा परम धाम में स्वरूप क्या था, फिर जब मैं सृष्टि चक्र में पार्ट बजाने आया तो मेरा आदि स्वरूप कितना श्रेष्ठ था, फिर मध्य में द्वापर में आए तो हमारी मूर्तियां बनी, मंदिर बने, पूज्य स्वरूप कैसा था, फिर ब्राह्मण बने, बाबा ने इतना श्रेष्ठ भाग्य दिया, महान आत्मा बनाया, ये ब्राह्मण स्वरूप कितना विशेष जीवन है, और उसके बाद ब्राह्मण से फरिश्ता बने, फरिश्ता बन करके, संपन्न बन करके घर गए, फिर पार्ट में आए। अब ये बाबा ने स्व का दर्शन कराया। वैसे साकार में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसमें जो पार्ट बजाया उसके भी हम नॉलेजफुल हैं, कब जन्म मिला, वहाँ का इतिहास क्या है, वहाँ का भूगोल क्या है, वहाँ की उस समय का जलवायु कैसा है, सब कुछ तो बाबा ने पढ़ाया एक एक बच्चे को, लेकिन कितना गहराई से उसकी स्टडी की है, कितना उस पर मनन चिंतन किया, कितना उसका स्वरूप बने। तो दीदी का भी वही अभ्यास, दिन रात मुरली मुरली मुरली, दादियों का यही अभ्यास रहा, और इससे वो आत्माएं ज्ञान स्वरूप बन गई। व्यर्थ क्या होता है उनके नाम निशान जीवन में नहीं, किसको कहते हो व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, व्यर्थ नहीं आया। तो हम सबको इस समय अपनी संकल्प शक्ति पर बहुत ध्यान देना है। इस संकल्प शक्ति से ही इस समय स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। पहले स्व पर राज्य करेंगे, मन अगर कंट्रोल में आ गया, कंट्रोलिंग पावर आ गई, संकल्प पर कंट्रोल है तो इंद्रियां क्या करेंगी, कंट्रोल में आ जाएंगे, मालिक बन जाओगे। तो पहले मन को अपने अधीन करना, आत्मा मन की मालिक बन जाए, और जब मन पर राज्य करा, कंट्रोल कर लिया, तो उसके द्वारा फिर पहले कर्म इंद्रिय जीत बनी, फिर विक्रमाजीत बनी, विक्रम नहीं होंगे, कोई पाप कर्म नहीं होंगे, और जितना विक्रमाजीत बनेंगे उतना प्रकृति जीत और माया जीत बन जाएगी, और जब प्रकृति जीत माया जीत बनेगी तो कर्मातीत बन जाएगी। तो जो हमारे पुरुषार्थ की संपूर्ण मंजिल है, उस मंजिल को कैसे बड़ों ने प्राप्त किया, किस विधि से प्राप्त किया, हम सब को बाबा ने कहा है बच्चे बाबा को देखो, और जो ऐसी आत्माएं जिन्होंने इस मंजिल को पा लिया है उनको फॉलो करो, उनको देखो, उनके आधार से चलो। ये मार्ग इतना सहज है, लेकिन कई लोग उसको सहज मार्ग को सहन करने वाला मार्ग बना दिया, थोड़ी थोड़ी बातों में, तेरे में मेरे में, मैं बड़ा तू बड़ा, मेरी एरिया तेरी एरिया, आए थे हरिभजन को टन लगे कपास, आए थे अपनी स्थिति बनाने के लिए, और तेरे मेरे में फंस गया करके। भाई बाबा के घर में आए हो, अपनी स्थिति बनाओ, अपने जीवन को सफल करो, जो शक्तियां बाबा ने दी हैं, तन की मन की धन की समय की विशेषताओं की, दी तो बाबा ने ही हर एक को, जो बाबा दी है तूने तेरी सेवा में सफल हो जाए। बस एक लक्ष्य रखो कि बाबा ने इतना सब हमको दिया है, प्यार दिया, पालना दी, सिखाया, नियम सिखाए, मर्यादाएं सिखाई, अब मुझे उनका रिटर्न करना है, और उसका रिटर्न यही है हमारी श्रेष्ठ जीवन बने। जहां पर कोई ऐसे संस्कारों का टक्कर है, हम अपने आप को टर्न करें, टक्कर में नहीं जाना, अपने आप को टर्न कर लेना, तब बाबा की पालना का हम रिटर्न कर सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय अगर बाबा की पालना का रिटर्न करना ही है, बाबा कई बार कहते हैं अभी रिटर्न जर्नी है, वापस जाना है, और रिटर्न जर्नी के पहले सबको रिटर्न करना है, तो बाबा ने हमें साकार मुरलियों के द्वारा 33 साल पालना दी, और अव्यक्त रूप में 48 साल पालना 69 शुरू किया, 2017 तक गुलजार दादी जी के द्वारा महावाक्य चार, और वो सब हमारे पास है। स्टडी करो, उसका स्वरूप बनो, उसका चिंतन करो, और बहुत अच्छी स्थिति बना करके अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपने मधुर व्यवहार से बाबा का नाम रोशन करो। वाणी द्वारा बाबा प्रत्यक्ष नहीं होगा, लेकिन वाणी के साथ अगर हमारी मनसा प्योर है, शुद्ध है, शक्तिशाली है, तो मनसा की शुद्ध वाइब्रेशन से, हमारी चलन और चेहरे से बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। अब वर्तमान समय यही एक सेवा रह गई है कि हम सब अपने जीवन से, अपनी धारणाओं से बाबा का नाम रोशन करें। कोई ये न कहे ब्रह्मा कुमारी में जाता है, ऐसे करता है, ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है, बहुत लोगों की नजर है, इसलिए हम सबकी नजरों में है, और जिस पर सबकी नजरें होती हैं वो हीरो एक्टर कहलाते हैं। हीरो एक्टर हो आप सभी, तो हीरो एक्टर्स पर सबकी नजरें हैं, और उनका ऐसा एक्ट हो, ऐसी एक एक एक्टिविटी हो जो सब कहें वाह वाह वाह, ठीक है ना, वाह वाह करें ना, ऐसे नहीं ये भी ऐसे करते हैं क्या, यहां भी ऐसे होता है क्या। आजकल अगर चलते फिरते आप किसी दुकान के आगे खड़े हो जाओ, जो चाट पकौड़े की दुकान होती है, बैज लगा हुआ हो, आप खड़े हो जाओ वहां, खाओ या ना खाओ खड़े हो जाओ 10 मिनट, फटाफट बहनों के पास फोन आ जाएगा, एक भाई आपका ध्यान में वो नहीं खुद, लेकिन देखा उसने, बहनों को जानता है, फट से फोन करेगा, क्या आप लोगों ने छुट्टी दे दी है क्या बाहर खाने की, वो एक भाई ठेले पर खड़ा था वहां खाना, काया नहीं काया, इतनी नजरें हैं सबके ऊपर, ध्यान देना। एक जगह पर ये जो बार होते ना जहाँ पर ये लोग करते होंगे कुछ डांस वगैरह क्या होता है पता नहीं, वहाँ एक स्टिकर वाली गाड़ी खड़ी थी जिस पर बाबा का स्टिकर लगा था। अब स्टिकर तो आजकल कॉमन हो गया है, कोई भी आता है दीदी हमारी गाड़ी को स्टिकर लगा दो, ओम शांति काशी बाबा के स्टिकर लगा देते हैं। तो स्टिकर वाली गाड़ी को देख के सेंटर पर फोन कर दिया उसने कि आप लोगों ने क्या ये बाहर में जाने की शराब वगैरह पीने की छुट्टी दे दी है लोगों को? क्यों भाई क्या हुआ, कौन आया? आपकी एक गाड़ी खड़ी थी जिस पर स्टिकर लगा था, किसने स्टिकर लगा के खड़ा किया पता नहीं। ना इतना लोगों की नजर है, तो जब सबकी नजरों पर हो तो कितना ध्यान देना चाहिए, फुल अटेंशन अपने कर्मों पर, अपने बोल पर, अपनी चलन पर बहुत ध्यान दो। ऐसी सरलता से चलो, मधुरता से चलो, अपने हर नियम का पालन करते हुए चलो, आपका आभा मंडल सेवा करेगा। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी वो बाबा जो मुरली में पहले कहता था ना, बच्चे चित्र उठाओ, ट्रेन में बैठो, बातें करो और उनको संदेश दो, एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जाओ, तीसरे डब्बे। अब वो समय नहीं रहा, वो समय था वो समय। अभी सब जानते हैं ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान क्या है, इनके पास कौन सी नॉलेज। अभी आपके एक एक एक्शन पर उनका ध्यान है, क्या क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कहाँ से चलते कैसे। तो हम सब बाबा के बच्चे इस समय बाबा की जो पालना मिली है उसका रिटर्न करें, अपने संस्कारों को दिव्य बनाएं, अलौकिक बनाएं। जो ऐसे नेगेटिव संस्कार आ गए हैं रावण की देन है, अभी उन पर हम सब पहरा दें कि अभी इनका वार नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बन करके बाबा का नाम रोशन करो और अच्छी तरह से मिलजुल करके जो सेवाएं रह गई हैं, हमारी नीलम दीदी ने बहुत प्यार से इस फुलवाड़ी को पाला है, मैं कई बार आया हूँ आपके नवरंगपुर में और दूसरे जो सेंटर्स हैं। आप सब, हमारे प्रहलाद भाई जो था पहले वो हमारा दोस्त था, मधुबन में ही रहता था पहले, तो इसलिए बड़ों की बहुत अच्छे शुभ संकल्प रहे हैं। आप सब उनकी पालना में पले हो, बाबा के घर में आए हो, कुछ संकल्प करके जाना कि ऐसा जोन बन जाए, ऐसा निर्विघ्न बने जो कहीं भी कोई भी ये न कहे कि बड़ों के जाने के बाद ऐसा हो गया। सब बहुत स्नेह से मिलजुल करके जो उनकी रही हुई सेवाएं हैं उनको संपन्न करना है, यही तो उनकी पालना का रिटर्न है। ठीक है, बहुत अच्छा है, सबने अच्छी भट्टी की है और अभी हम आधा घंटे की विशेष तपस्या करेंगे आपके साथ। सब तैयार है ना, उठेंगे तो नहीं बीच में 7:30 तक।
प्यारी माँ।